शांति। जब हम मधुबन में आते हैं, बहुत सारे क्लासेस सुनते हैं, ज्ञान मिलता है, रोज की मुरली है, यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस हम सुनते हैं, तो ज्ञान बहुत जगह से मिलता है, तो कई बार उसमें हमारी योग की गहराई खो जाती है। लेकिन योग द्वारा ही आत्मा पवित्र बनने वाली है। अब इस योग की गहराई को बढ़ाए कैसे? वर्तमान समय परिस्थितियां और ही बिकट होती जा रही है, ऐसे समय पर हमारा योग और गहरा हो, उसकी कोई सरल विधि हमें बताए, उसके लिए हमारे बीच उपस्थित है मधुबन के आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी। भाई जी का सभा में बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ऐसे तो आप सब इनसे पहले से ही परिचित है, फिर भी कुछ नए भाई बहनें भी जुड़े हैं हमारे साथ, तो कहना चाहेंगे, आपने यह ज्ञान 1972 में नागपुर महाराष्ट्र से प्राप्त किया, 1973 में नागपुर यूनिवर्सिटी से आपने स्वर्ण पदक के साथ विद गोल्ड मेडल आपने एमएससी पास किया, तथा 1976 से माउंट आबू मुख्यालय में अपना जीवन ईश्वरी सेवा अर्थ समर्पित किया। आपने भारत के सभी प्रांतों में ईश्वरीय सेवा अर्थ भ्रमण किया है और राज्यों पर क्लासेस कराए हैं। रेडियो, दूरदर्शन, अनेक प्रकार का सोशल मीडिया, आपके इंटरव्यूज इसमें समय प्रति समय प्रसारित होते रहते हैं। आपकी विशेषता है राजयोग का गहन अध्ययन स्वयं भी करना और दूसरों को भी कराना। आपने विश्व के पांचों ही महाद्वीपों के 100 से भी अधिक देशों का भ्रमण करके ईश्वरीय संदेश तथा राजयोग की शिक्षाएं देकर हजारों लाखों आत्माओं को लाभान्वित किया है। वर्तमान समय आप युवा प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन है एवं मधुबन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन तीनों परिसरों में हमारी मीठी टोली का विभाग सेवाएं बड़े सुचारू रूप से संभालते हैं। तो ऐसे मीठे भाई जी का सभा में बहुत बहुत स्वागत, आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी।
ओम शांति। योग की गहराई कैसे बढ़ाएं? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं भगवान हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने के लिए 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चारों सब्जेक्ट्स में मुख्य सब्जेक्ट हमारा योग का है। अन्य 3 सब्जेक्ट इसको सपोर्ट करने वाले हैं और हमारी रेस योगाभ्यास में ही है, और इस रेस में हमें केवल रनर नहीं बनना है लेकिन विनर बनना है। इसलिए योगाभ्यास में मास्टरी लेना बहुत जरूरी है। हम हर रोज योग का अभ्यास करते हैं, प्रातः काल मुरली भी सुनते हैं, लेकिन जब हम व्यवहार में आते हैं, कारोबार में जब आते हैं, तो विकारों के अंश वंश हमारे व्यवहार में दिखाई देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि योग हमारा जितना पावरफुल होना चाहिए उतना नहीं है। योग की गहराई जितनी चाहिए उतनी नहीं है। इसलिए आज हम आपके साथ कुछ एक महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट करेंगे जिससे आप योग की गहराई को सहज बढ़ा सकेंगे। सबसे पहली बात है, योगाभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति का जो हम अभ्यास करते हैं उसकी गहराई को बढ़ाते रहना जरूरी है। ऊपर ऊपर केवल आत्मा समझना आत्मा देखना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो गहराई से आत्मा समझे अर्थात आत्मा और आत्मा के जो सात मुख्य गुण हैं उन सातों गुणों की भी अनुभूति हमें होती रहे तो धीरे धीरे आत्म अभिमानी स्थिति हमारी पक्की होती जाती है। और जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं आत्मा अनुभव करते हैं तो दूसरों को भी स्पष्ट आत्मा हम देख सकते हैं। जब हम स्वयं को देह समझते हैं तो दूसरों को देहिक दृष्टि से ही देखते हैं। जैसे शिव बाबा निराकारी स्वरूप में सदा रहते हैं तो जब बाबा बच्चों को मिलते हैं तो निराकारी स्वरूप ही सबका देखते हैं और उसके आधार पर मुरली चलाते हैं। तो इसलिए कहते हैं जितना खुद में खो जाते हैं उतना ही खुदा में खो जाते हैं। इसलिए एकांत में बैठकर आत्मा को देखें, देखने के परसेंटेज को बढ़ाते चलें और आत्मा के भान में स्थित होने की गहराई को भी बढ़ें। कहते हैं हम इस संसार में नंगे आए थे और नंगे ही जाएंगे। नंगे माना न अंगे, इस अंग का देह का भान बिल्कुल ना हो, केवल मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, ऐसा ही अनुभव हमें सदा होता रहे। ये जो गैदरिंग है हॉल में, ये भाई बहनों की सभा नहीं है, लेकिन ये चमकते हुए चैतन्य सितारों की, दिव्य सितारों की ये सभा बैठी हैं, ऐसा हमें अनुभव होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। देखो हम सभी आत्माएं बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भाग्य विधाता ने जो सारे संसार को भाग्य बांटता है उस भाग्य विधाता बाप ने हमें एक एक आत्मा को करोड़ों में से सिलेक्ट करके यहाँ लाया है। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। सारा संसार उनके गुणगान गाता है और वो भगवान हम बच्चों के गुणगान मुरली में गाते हैं। देखो कितने भाग्यशाली हम आत्माएं हैं। तो कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। तो आत्मा समझते ही बाबा की याद आने लगती है और हमारे पाप खत्म होने लगते हैं। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति को गहराई से हम बढ़ाते चलें। दूसरी बात है, परमात्म अनुभूति की गहराई को भी हमें बढ़ाते रहना जरूरी है। जब हम परम धाम में शिव बाबा को दिव्य नेत्र से देखते हैं तो उसकी गहराई बढ़ाना अर्थात बाबा को बहुत नजदीक से हमें देखना, बहुत नजदीक से उनके स्वरूप को महसूस करना। परमात्मा सर्वशक्तिवान हैं, सारे संसार को शक्तियां प्रदान करने वाले हैं, सारे संसार की आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने की क्षमता उनके पास है। तो उनका ऐसा शक्तिशाली स्वरूप हमें बहुत नजदीक से देखना है और अच्छी तरह से अनुभव भी करना है। हमने बाबा कर कहकर बाबा को साधारण बना दिया है। वो तो मेरा बाबा है, बाबा तो है, लेकिन वो कौन सी हस्ती है जिसके मुट्ठी में सारा संसार है, सारा संसार के कारोबार उसके इशारे पर चलती हैं। लोग कहते हैं जो झाड़ होते हैं उसके पत्ते भी परमात्मा के इशारे के बिना नहीं हिलते हैं। इन झाड़ों के पत्तों की बात नहीं है, हम जो कल्प वृक्ष की आत्माओं रूपी पत्ते हैं उनके इशारे के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकते हैं। बाबा ने कह दिया है, मैंने हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट दिया हुआ है, जो पार्ट मैंने दिया है वो सभी बजा रहे हैं। कहने का मतलब इतनी बड़ी वो हस्ती है, उसको हमने बहुत नजदीक से देखना है। बाबा का मन कितना पवित्र है, बुद्धि कितनी विशाल है, संस्कार कितने रॉयल हैं, कितने जेंटल हैं, और पर्सनालिटी भी बहुत गजब की है, और स्वरूप भी बहुत शक्तिशाली, हमें अच्छी तरह से अनुभव करना है। अर्जुन ने ऐसा ही नहीं कहा कि परमात्मा का स्वरूप इस साकारी दुनिया के सूर्य से हजारों गुना तेजो में है, ऐसे ही नहीं कहा है। उसने जरूर कुछ महसूस किया होगा तभी उसका वर्णन ऐसा किया है। तो परमात्मा का स्वरूप ये जो साकारी दुनिया का सूर्य है इससे कई गुना शक्तिशाली है। आप सोचो, इस सूर्य की रोशनी में आप एक मिनट खड़े होकर दिखाओ, नहीं खड़े हो सकते हैं। ये कहते हैं मेरी चमड़ी जल रही है, इतनी गर्मी उसकी महसूस होती है। तो इस सूर्य का वो बाप हैं, वो कितना शक्तिशाली होंगे आप सोच सकते हैं। कहने का मतलब, ताली बजाओ ना अच्छी तरह से। ऐसा सर्वशक्तिवान बाप हमें मिला है, सारी दुनिया उसको ढूंढ रही है और उसने हमें ढूंढा है और अपनी शीतल गोद में बिठाकर हमें माल भी खिला रहा है, खजाने भी लुटा रहा है, हमारे पर वरदानों की बरसात भी कर रहा है। कितने भाग्यशाली हम आत्माएं हैं आप सोचो जरा। योग की गहराई बढ़ाने के लिए समान में जब हम स्थित रहते हैं उसकी भी गहराई बढ़ाते रहना जरूरी है। जब परमात्म मिलन हम मनाते हैं तो मन और बुद्धि हमारी खुशी से और नशे से, ईश्वरीय मस्ती से भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान से मिल रहे, कोई साधारण हस्ती से नहीं मिल रहे हैं। जब हमारा मन और बुद्धि खुशी से भरपूर होता है तो परमात्म मिलन का मजा ही कुछ और आता है। परमात्म मिलन में बहुत सुंदर गहन और गहरे अनुभव हमें स्वतः ही होते हैं। इसलिए हमारा मन और बुद्धि खुशी में झूमता रहे, खुशी में नाचता रहे और मस्ती में भी हम झूमते रहें, तो उसके लिए आवश्यकता है सारे दिन भर में समान के सिंहासन पर डटे रहना। कल भी बाबा ने कहा कि बाबा ने की चाहना है मेरा हरेक आत्मा रूपी बच्चा मैं राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूँ। जो स्वयं का राजा बनता है वही सतयुग में औरों का राजा बनता है। तो राजा सिंहासन पर बैठते हैं और राजा अपनी प्रजा पर शासन और नियंत्रण करता है। तो आत्मा रूपी राजा को बाबा ने ये समान का सिंहासन दिया है। हम बहुत रॉयल बच्चे हैं, दुनिया में जो बहुत बड़े रॉयल होते हैं उनको टाइटल मिलता है। हम भी बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं, तो हमें भी भगवान ने बड़े बड़े टाइटलों से नवाजा है, बड़े बड़े सम्मान के टाइटल दिए हैं। तो टाइटल केवल लिखने और रटने के लिए नहीं दिए हैं, उसमें हमें स्थित रहना है, उसका स्वरूप बनना है और उसका अनुभव करना है और उसकी गहराई को भी हमें बढ़ाना है। तो जितनी सम्मान की गहराई बढ़ेगी उतनी योग की गहराई ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, क्योंकि बाबा हमें सिंहासन पर बिठाते हैं और माया हमें उठा देती है। माया बिठाते हैं बाबा, बिठाते हैं माया गिराती है। इसी कसम कशा में हमारा समय निकलता है। तो हमें जो सिंहासन बाबा ने हमें दिया है वो किसी भी हालत में हमें छोड़ना नहीं है, चाहे कोई हमारी ग्लानी करता है, कोई अपमान करता है, फिर भी हमें ये सिंहासन नहीं छोड़ना है, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये सिंहासन मिला है। 63 जन्म हमने कितनी मेहनत की है, कितने भगत की है भक्ति, इसका परिणाम स्वरूप बाबा ने इतना बड़ा हमें सिंहासन दिया है, इसलिए इसको हमें छोड़ना नहीं है। चौथी बात, योग की गहराई बढ़ाने के लिए प्यार को हमें बढ़ाते जाना जरूरी है। याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा सदा बढ़ती रहे, इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। हमारा प्यार बाबा से है इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बाबा चाहते हैं हमारा प्यार जिगरी प्यार हो, हड्डी प्यार हो। तो जिगरी प्यार, जिगर दिल को कहते हैं, दिल का प्यार जब होता है तो रगों में ऑटोमेटिक समा जाता है, संकल्पों में वो समा जाता है। उसका प्रैक्टिकल प्रमाण हम सभी ने अपनी दादियों को देखा है, दादाओं को देखा है। दादियों का प्यार बाबा से असीम प्यार था। उनको जो बाबा ने कराची से लेकर पालना दी, उस पालना के कारण उनके रग रग में परमात्म प्यार समाया हुआ था, जिगरी प्यार उनका बाबा के साथ था। हमने देखा यहाँ जानकी दादी जी, प्रकाश मणि दादी जी बाबा से जब मिल रही थी, बाबा उनको बाहों में समा देते थे, दादियां भी बाबा को बाहों में समा लेती थी। क्या था उनके पास? जानकी दादी जी का स्लोगन था, सफेद कपड़े जेब खाली हम हैं जगत के वाली। भाई देखो, सफेद कपड़े जेब खाली, क्या था उनके पास? रग रग में, रोम रोम में केवल परमात्म प्यार समाया हुआ था, क्योंकि प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है। हमारे और बाबा के बीच में हजारों मीलों की दूरी है, उस दूरी को समाप्त करके आमने सामने की नहीं लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार कराता है। जितना प्यार में हम खो जाते हैं उतना गहराई योग की बढ़ती जाती है। जब स्विमिंग टैंक में हम तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो शरीर हमारा उस पानी में गहराई में जाता है, तो उसका आनंद हमें और आता है। ऐसे प्यार के सागर में बुद्धि जितनी गहराई में जाती है उतना हमें बहुत अच्छी तरह से आनंद अनुभव होने लगता है, क्योंकि प्यार के सागर के लहरों में लहराने से क्षणिक आनंद मिलता है, लेकिन मानिक मोती हीरे मोती तो सागर के तले में होते हैं। तो जब प्यार के सागर के तले में हम डूब जाते हैं तो कौन से हीरे माणिक मिलते हैं हमें? बहुत सुंदर गहन अनुभव के हीरे मोती हमें मिलते हैं। इसलिए प्यार हमारा बाबा के प्रति बढ़ता रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। हमारा प्यार बिखरा हुआ रहता है इधर उधर, बाबा से भी होता है लेकिन इधर उधर बिखरा भी होता है। किसी देहधारी से प्यार किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी संबंधी के साथ होता है, तो जो बिखरा हुआ प्यार है उन्हें उसको बटोरना है और एक ठिकाने पर उसको फोकस करना है। ठाकुर बनकर एक ठिकाने पर बुद्धि को फोकस करना है, दिल का सच्चा प्यार हमें बाबा के साथ अनुभव करना है। बाबा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके पास है क्या? किराए का मकान तो लेकर बैठे हो, आपके पास दिल के सच्चे प्यार की पूंजी है, उसका मैं सौदा करने के लिए आया हूँ और मैं बहुत पक्का सौदागर हूँ। जितना प्यार मुझसे करोगे उतना ही मैं आपसे करूँगा। इसलिए योग की गहराई बढ़ाने के लिए प्यार के परसेंटेज को बढ़ाते जाना जरूरी है। तो जितना प्यार जास्ती बाबा के तरफ हम ट्रांसफर करते जाते हैं उतना योग के सुंदर गहन अनुभव हमें होते जाते हैं। क्योंकि कहते हैं जहाँ प्यार वहाँ बुद्धि की तार स्वतः ही जुड़ जाती हैं। जैसा प्यार वैसा तार हमारा जुटा रहता है, जितना प्यार उतना तार हमारी बाबा के साथ जुटी रहती हैं। इसलिए प्यार हमारा बाबा से क्यों नहीं बढ़ता है इसके कारण को हमें ढूंढना है। उसका कारण ये है कि जो बाबा से हमें प्राप्तियां हो चुकी हैं, जो हो रही हैं और जो होने वाली हैं, उसको हम कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए बुद्धि इधर उधर भटकने लगती है। इसलिए सर्व प्राप्तियों का भंडार जो बाबा है, सर्व रसों के भंडार बाबा जो है, सर्व संबंधों की चक्रीन जो बाबा है, वहाँ हमें बुद्धि को ठिकाना देना है और ठाकुर बनकर वहीं बैठना है। बाबा ने कहा है मैंने आपको बिन कौड़ी बादशाह बनाना है, कौड़ी एक खर्च नहीं करना है और बादशाह मैंने आपको बनाना है। भी कैसे बनाएंगे? बाबा कहते कुछ नहीं करो, मेरे पास परम धाम में आकर बैठ जाओ, सागर के किनारे पर बैठ जाओ और मेरे से माल लेते जाओ, खजाने लेते जाओ और सारे संसार की आत्माओं को देते जाओ। तो ये जो देने का संस्कार है, दातापन का बजाओ ना चरा अच्छी तरह से तालियां। तो ये जो दातापन का संस्कार है, ऑटोमेटिक परम धाम में हम जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करके नीचे आएंगे, राजा महाराजा का सिंहासन आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। इसलिए हमें दरिया दिल से, बड़े दिल से इन खजानों को बांटते जाना है, बहुत अच्छी तरह से दाता बनना है। हमें अपने जेब से कुछ खर्चा नहीं करना है, मनसा सेवा करना, अर्थात बाबा से खजाने लेते रहना और संसार की आत्माओं को बांटते रहना। तो ये सेवा हमने बहुत करना है। अभी सारे दिन भर में हमें दो ही बातों पर फोकस करना है, सेवा और सेवा, शिव बाबा की याद या बाबा की सेवा। ये दो ही बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बाकी दूसरे बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये क्योंकि बहुत मूल्यवान समय है, ये कमाई करने का समय है, इसलिए बाबा कहते हैं जितना कमाई करना चाहे आप कमा सकते हो, क्योंकि सागर हमें मिला हुआ है खजानों का। तो संगम युग अर्थात खजाने लूटना और लुटाना दूसरा काम ही नहीं। इसलिए योगी बच्चों को संपूर्ण अधिकारी बच्चे कहते हैं, दूसरे बच्चों को भी अधिकार मिलता है, लेकिन योगी बच्चे परमात्मा का दिल जीत लेते हैं, और जो भगवान का दिल जीत लेते हैं भगवान सारे खजाने लुटा देता है। लुटो जितना मर्जी, कोई आपके लिए कंडीशन नहीं है। इसलिए हमें बाबा से अपना और पूरा अधिकार हमने लेना है। एक याद रखना है बात, मार्जिन छोड़ने वालों को मार पड़ती है, क्योंकि अंतिम समय अगर हमने पुरुषार्थ में थोड़ी सी भी मार्जिन छोड़ी अलबेलेपन के कारण, तो हमें मार पड़ेगी। कौन सी? पश्चाताप की मार पड़ेगी। कौन सी? मौका था, लेकिन मौके का जितना मैंने लाभ लेना चाहिए था उतना नहीं लिया। होशियार होशियार जो होश में रहते हैं, बाबा का इशारा क्या है, समय का इशारा क्या है, दुनिया का इशारा क्या है, इस चारों तरफ ध्यान रखकर हर एक पल का पूरा लाभ जो लेता है उसको होशियार विद्यार्थी कहते हैं। समय को सफल करना अर्थात सफल, अच्छा फल पाना, अच्छी प्राप्ति अनुभव करना, उसको कहते हैं समय को सफल करना। क्योंकि बाबा कहते हैं एक सेकंड मुझे याद करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, अनेक पद्मों की कमाई आपको होती रहती है भाई। ऐसी कमाई करने वाला तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है आज तक, तो कि कोई पैदा ही नहीं हुआ है, केवल बाबा के बच्चे हैं, केवल बाबा के। ताली नहीं बज रही, कमाल है। जितने भी संसार में धनवान लोग हैं, अखबार में आता है फलाने की एक दिन की कमाई इतने अरब डॉलर, इतने खरब डॉलर है, लेकिन एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, केवल बाबा के बच्चे हैं। अब इतनी कमाई हमें होती है तो भाई चांद छोड़ना चाहिए क्या? बोलो ना भाई, इसमें हमें लोभी लालची बनना है, खूब माला माल बनना है, सेठ बनना है तो ऊपर बुद्धि को सेठ करना है। लेकिन आपने सोचा होगा कि एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई होती है, ये सचमुच होती है? ये कैसे होती है भाई? मैंने इस पर बहुत सोचा, इसका जवाब बाद में मुझे मिल गया। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा से हमें शक्तियां मिलती है, और जितनी हमें शक्तियां मिलती हैं उन शक्तियों के आधार पर हमारी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां होती है, उन पर नियंत्रण और अनुशासन करने की शक्ति हमारी बढ़ती है। राजा महाराजा बनने के लिए ये दो शक्तियां, नियंत्रण रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर होना जरूरी है। तो योग लगाने वालों के पास ये शक्तियां बहुत होती हैं। ऐसी आत्माएं जो परम धाम में जाती हैं, वहां रेस्ट करती हैं, और जैसे नीचे आती है सतयुग में राजा महाराजा का सिंहासन मिलता है, और आते ही बेहिसाब प्रॉपर्टी मिलते हैं, क्या सोने के महल, क्या अनाज भंडार भरपूर, आते ही इतना बेहिसाब प्रॉपर्टी मिलती है। कौन देता है, कब देता है, किस रूप में देता है, अपने से पूछो। वो प्राप्तियां हमें योग से मिलती है। जो योग नहीं लगाते हैं संगम युग में, अनेक पद्मों की कमाई नहीं करते हैं, वो सतयुग में जब आते हैं तो साधारण प्रजा के नौकर चाकर के घर में जन्म मिलता है, वहां थोड़ी सी प्रॉपर्टी उनको मिलती है, लेकिन योग लगाने वाले बच्चों को माला माल बाबा करता है। पहले ही जन्म में इतने खजाने देते हैं, एक के जन्म तो बेहिसाब खजाने हमें मिलते हैं, उसका जवाब बाबा ये देते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना है, इधर बाबा कहते कमाई करो, का माई, आगे माई है, माई माना माया, बाबा कहते जाओ माया को, कहता है इसकी कमाई होने नहीं देना, ये मेरी ड्यूटी देता हूं मैं तुम्हें, क्योंकि मेरे पास 8 सीट है, 108 है, 16 जा रहे, बाकी इतने बड़ी सीट तो मेरे पास है ही नहीं, किसको किसको मैं सीट पर बिठा दूं। इसलिए माया को कहता है तुम्हारा काम है विघ्न डालना, कमाई होने नहीं देना। तो हमें ये सोचना है माया किसी भी रूप में आ जाए लेकिन मुझे वो रोक नहीं सकती है। कई बार हम देखते हैं कोई ऐसा विकराल स्वरूप समस्या का हमारे सामने आते हैं, हम लड़खड़ा जाते हैं, कोई विघ्न आता है तो हलचल में आते हैं। एक बात ध्यान में रखना, जब मैटर बड़ा होता है तो पहले से ही बाप खड़ा होता है मदद करने के लिए। जब मैटर बड़ा होता है तो पहले से ही बाप खड़ा होता है मदद करने के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं मैं योगी बच्चों को खास मदद करता हूँ, क्योंकि जो भगवान को याद करते हैं भगवान भी उनको याद और प्यार करते हैं, उनको मदद करने के लिए दौड़ते हैं। तो समस्याएं जब आती हैं तो हमने घबराना नहीं है, हमने उससे डरना नहीं है, बिल्कुल निडर बन के आत्मविश्वास और साहस के साथ उस समस्या को निपटाना है और विजय स्थिति की अनुभूति हमें करते रहना है। जो विजय रतन बनते हैं उनके चेहरे पर विजय का नशा हमेशा छाया रहता है। ये देखो सभी के चेहरे पर विजय का नशा है, भगवान ने हमें ये इतना सुंदर चेहरा दिया हुआ है भाई, उसकी सुंदरता क्या है, लिखो स्लोगन, चेहरा कितना भी सुंदर होगा और उस पर मुस्कुराहट नहीं होगी तो कोई नहीं देखना चाहेगा। तो स्लोगन है मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सतज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट हमेशा होना जरूरी है, और भगवान बाप हर रोज ये रूहानी बगीचे को ज्ञान और योग के जल से सींचता है। तो वो बागवान चाहता है मेरे बगीचे का रूहे गुलाब बहुत खिला हुआ हो, बहुत खुशनुमा चेहरा सबका हो, इसलिए चेहरे पर खुशी हमेशा छाई रहे और उसका परसेंटेज भी सदा बढ़ती रहे। हमारा चेहरा बोले कि हमें कुछ मिला है, क्योंकि आगे चलकर हमें चलन और चेहरे से बहुत सेवा करनी है, मुख से सेवा नहीं करनी होगी, क्योंकि लोग ज्ञान सुन सुन के थक चुके हैं, वो सुनना नहीं चाहते, वो देखना चाहते हैं। वो चेहरा बोले कि इस आत्मा के पास बहुत खजाने हैं, खजाने जब होती हैं तो उसकी खुशी होती है, तो वो खुशी ऑटोमेटिक झलकती है। जैसे नल के नीचे बाल्टी रखते हैं, वो बाल्टी में पानी भरता है, जब बाल्टी भर जाती है तो वो ओवर फ्लो होती है। ऐसे नशा खुशी हमारे बुद्धि में भरती है तो ओवर फ्लो के रूप में हमारे चेहरे पर वो खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। चेहरा हमारा हरा भरा हो, दिव्य गुणों की खुशहाली हरियाली हर एक चेहरे पर हो, ये बाबा की आशा है। इसलिए हमें कोई साधु संत महान आत्मा धर्मात्मा पालना नहीं करा रहा है, स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहे हैं, इसलिए उनको पालन हार कहलाते हैं, ऐसी पालना देते हैं हार पहनाने के लायक, पूजनीय हमें बनाते हैं, इसलिए उसका पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें खुशनुमा चेहरे के द्वारा देना है। अभी पांचवी बात है, योग की गहराई को अगर हमें बढ़ाना है, शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करना है, तो योगाभ्यास में जो एकाग्रता होती है उसको हमने अच्छी तरह से बढ़ाना है। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने का मूल मंत्र बड़ा सिंपल है, बुद्धि रूपी नेत्र को बाबा पर टिकाएं। जब बुद्धि बाबा को देखती है तो मन बाबा के बारे में सोचता है, बुद्धि अगर इधर उधर भटक जाती है तो उसको चेक करना है, चेंज करना है, बाबा पर बिठाना है। अभी जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी एकाग्रता की शक्ति हमारी बढ़ती जाएगी। अभी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना अर्थात फुल कॉन्सेंट्रेशन हमारा ज्ञान सूर्य बाबा पर होना जरूरी है। जब तक पूरी एकाग्रता नहीं होती है तब तक शक्तिशाली योग की अनुभूति नहीं होती है। इस एकाग्रता की बहुत इम्पोर्टेंस इस योग की प्रक्रिया में है। हम छोटा सा उदाहरण देते हैं कि कागज हाथ में है, वो सूर्य की रोशनी में हम जलाना चाहते हैं, सूर्य में बहुत गर्मी है लेकिन वो नहीं जला सकता है, उसके लिए मैग्नीफाइंग लेंस की हम मदद लेते हैं और उसको पूर्ण एकाग्रता के साथ उसके ऊपर रखते हैं, तो सूर्य की किरणें उस लेंस से पास होती हैं, तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऐसी ऊर्जा संपूर्ण एकाग्रता के साथ उस कागज पर बिंदु पर पड़ती है, वो अग्नि का रूप लेती है, कागज जल जाता है। ऐसे बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखते हैं तो ज्ञान सूर्य की जो शक्तियों की किरणें हैं, बुद्धि रूपी लेंस से जब पास होती हैं तो लेजर किरणें बनती हैं और इसी शक्तिशाली किरणें आत्मा पर संपूर्ण एकाग्रता के साथ पड़ती हैं, तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, योग की ज्वाला धधकने लगती है, योग की अग्नि जलने लगती है, उसमें हमारे विकर्म भस्म होते हैं। इसको कहते हैं योग की गहराई बढ़ाना। हम मधुबन निवासी 86 में मेडिटेशन हॉल में बाप दादा से मिल रहे थे। मुरली के बाद बाबा से प्रश्न पूछा, बाबा मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो बाबा ने कहा, शक्तिशाली योग की दो निशानियां होती है। पहली निशानी, योग शक्तिशाली योग में योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है और उस अग्नि में मेरे विकर्म भस्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव एक तरफ होता है और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि विकर्मों का बोझ घटता जाता है इसलिए हल्कापन लगता है। और खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी संपूर्णता की मंजिल की ओर नजदीक जाते रहते हैं इसलिए हमें खुशी होती है। इसलिए ये दो प्रकार की अनुभूतियां योगाभ्यास में हमें करते रहना है। इसलिए बाबा की याद की गहराई को बढ़ाने के लिए एकाग्रता की परसेंटेज को भी बढ़ाते रहना जरूरी है। एकाग्रता अर्थात एक आग्रहता, आग्रह से, लगन से, मस्ती से एक बिंदु पर मन और बुद्धि को फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिक उनसे हमें प्रचंड ऊर्जा मिलती है और आत्मा रूपी बैटरी तेजी से चार्ज होती है और हमें शक्तियों की महसूसता भी होती है। अमृत वेले या नुमा शाम के समय योगाभ्यास में बैठते हैं तो योगाभ्यास के बाद हमें ऐसा अनुभव होना जरूरी है कि मेरी आत्मा रूपी बैटरी बहुत चार्ज हो चुकी है, मैंने बहुत शक्तियां प्राप्त की हैं, ऐसा अनुभव हमें होना जरूरी है। ऐसा अभ्यास बढ़ाते जाना जरूरी है। योग का उल्टा होता है, क्या होता है? गयो योग गयो गयो माना परम नाम चले गयो, बाबा के पास बैठ गयो और सागर में खो गयो, तो आपकी आंखें बोलेगी आप यहाँ नहीं हैं, आप तो ऊपर बैठे हैं, ऊपर वाले की याद में खोए हुए हैं। जब ब्रह्मा बाबा को अंतिम दिनों में बाबा की झोपड़ी में देखते थे तो बाबा की आंखों से स्पष्ट दिखाई देता था बाबा यहाँ बिल्कुल नहीं है। मन से बुद्धि से बाबा पूर्णतया परम धाम में ट्रांसफर कर चुके हैं और परमात्मा की याद में डूबे हुए हैं। उनके नयन बोलते थे, उनका चेहरा बोलता था, ऐसी स्थिति हमें अपनी बनाना है। शेर का बच्चा कौन होता है? शेर होता है। अमीर का बच्चा कौन होता है? अमीर होता है। तो मेरे ब्रह्मा बाप की इतनी ऊंची स्थिति योग की उन्होंने बनाई है, तो मैं भी बना सकता हूँ। ऐसी दृढ़ता के साथ अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बाबा ने कल कहा है, दृढ़ता की चाबी को यूज करो। दृढ़ता की परीक्षा ही सफलता। ये कैसे स्पष्ट होता है? क्योंकि जिस कार्य में जितनी दृढ़ता होती है उतना हमें जो बाबा ने खजाने दिए हैं, समय का और संकल्प का खजाना, वो हम उसके पीछे लुटा देते हैं और उसके कारण हमें बहुत अच्छी तरह से सफलता मिलती है। अभी हम बहुत सुंदर योग की अनुभूति करेंगे। एक बार जोर से तालियां बजाएंगे, सभी जोर से तालियां बजाएंगे। और सभी योग चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, क्योंकि ये नींद का समय है। नाश्ता बढ़िया करके बैठे हैं तो निंद्रा देवी आ सकती है, तो चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूँ। मज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा को दिव्य गुणों का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा गुणवान हूँ। मस निराकार ज्योति बिंदु आत्मा से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। महज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहु ओर सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव रहे। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति स्वयं भाग्य विधाता मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते थकते ही नहीं है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी चैतन्य मकान से न्यारी होकर बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इन पांच तत्वों से पार उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं जहां चारों ओर सफेद 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 दिव्य प्रकाश प्रकाश है। महज आत्म ज्योति ने सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। ओहो फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चम चमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं जा रही। ओहो निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल। दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति परम शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन शांति धाम। मेरे प्राणों से भी प्यारे मेरे प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता महज आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं, निहारती ही जा रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों की अथाह सागर है। इस साकार दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मोज आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे, दग्ध होती ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। प्यार के सागर शक्तियों के सागर में मैं आत्म ज्योति गहराई से खोई हुई हूँ समाई हुई हूँ, कंबाइन हो चुके हूँ, शिव मैं बन चुके हूँ। ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूं, शक्तियों से भरपूर आत्म ज्योति बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से उड़ती हुई वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी वतन की ओर वापस आ रही हूँ और इस साकारी शरीर रूपी मकान में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी समान के सिंहासन पर बैठ गई हूँ। मौज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तिशाली किरणें सारे विश्व में चारों फैल रही है, वायुमंडल को वाइब्रेट करके शक्तिशाली बना रही है। मेरे भ्रुकुटी में मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक चारों फैल रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। ओम शांति शांति शांति।